ये प्रातः क्लास चल रहा था, एक 8-65 का पहली पेज के अंत में बात चल रही थी कोई नए आते हैं, बातें सुनते हैं तो कहते हैं आपकी तो बहुत नई बातें हैं, हम कहते हैं बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हिंदू धर्म के नहीं हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, विकारी बनने के कारण अपन को देवी देवता नहीं कह सकते। 1865 की वाणी का दूसरा पेज, पूजते भी भारतवासी देवी देवताओं को हैं, और देशों के वासी कोई देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियंस हैं क्राइस्ट को पूजते हैं, परंतु वो भी पतित होने के कारण अपन को देवता नहीं कह सकते। बल देवता नहीं कह सकते हो, अच्छा आकर के पावन तो बनो। तो वो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पक्षी हो, पूछा जाता है ना तुम देवता क्यों नहीं कहलाते हो, तो कहते हैं हम पतित हैं। अच्छा तो पतित से पावन बनो ना, तो कहते हो फुर्सत नहीं है। ऊंट पक्षी को बोलो उड़ो तो कहेगा मुझे पंख नहीं है, मैं तो ऊंट हूं ना। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा हम तो पक्षी है। तो बाप भी कहते हैं देवता बनो, माया ने पवित्रता के पर काट दिए हैं, परंतु वो बात समझते नहीं है। सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, कहाँ की यादगार है। ये श्रावण का महीना किस बात की यादगार है, लगातार रिम 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 झिम ज्ञान की बरसात होने की यादगार है। इस महीने में खास शिव की पूजा होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तुम्हारे लिए तो ज्ञान बरसात है, ये ज्ञान बरसात का सावन का महीना है। तुम व्रत रखते हो पवित्र रखने का रहने का, जब तक जिएंगे पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। मनुष्य फिर व्रत रखते हैं, भक्ति मार्ग में स्थूल भोजन छोड़ देते हैं, भोजन न खाने का व्रत रखते हैं। बाप कहते हैं विख का व्रत रखो, विख नहीं पियो। तो इस बात पर भी समझाना पड़ेगा, स्थूल भोग की बात नहीं है, ये तो विकारों के भोग की बात है। शिव को बहुत पूजते हैं, पूजा का आधार पवित्रता होती है। तो शिव बाबा भी कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूं फिर से पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। यहां इस दुनिया में तो कोई पावन नहीं है, पावन तो देवी देवताएं होते हैं। वो देवी देवताएं सतयुग में विख से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण आदि को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। यहां इस दुनिया में तो ये सब पतित हैं, ऐसे पतित हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। भक्त लोग अपन को कहते भी हैं हम पापी हैं, कपटी हैं, नीचे हैं। बाप कहते हैं अभी मेरी मत पर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बन जावेंगे। तुम ये तो समझते हो कि ये तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी भारी है। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बनना है। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बनकर के स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्वर्ग अर्थात स्व की स्थिति में जाने का वर्षा लेते हो। स्व माने ही आत्मा, आत्मा को राजाई का वर्षा मिलता है। आत्मिक स्वराज्य का वर्षा मिलता है तो उनको स्वराज्य कहा जाता है। मनुष्य तो देह अभिमानी है, अपन को देह समझते हैं। देह समझने के कारण कहते हैं कि यह हमारा राज्य है। या तुम अपन को आत्मा समझते हो, आत्मा कहती है हम इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे, हमें सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित हैं, बाकी जानते हो जैसी आत्मा होती है वैसा शरीर मिलता है। आत्मा में खाद पड़ी हुई है, ये विकारों की खाद है। पहले तुम आत्मा पवित्र सच्चा सोना थे, उस समय गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। तुम तो जानते हो कि सोने को हल्का करने के लिए मिलाया जाता है, सोने की कीमत कम हो जाती है। कलयुग आया तो फिर लोहे की खाद पड़ी। इस समय आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा है, इसलिए इस दुनिया को कहा जाता है झूठ खंड और सतयुग है सच खंड। अभी बाप के साथ योग रखने से ये जन्म जन्मांतर की अलाई निकल जाती है। इस याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। पुराने जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डालते हैं ना, तो ये योग अग्नि है। इसमें तुम्हारे 63 जन्मों की सारी खाद भस्म हो जानी है। हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। बाप भी सच है ना, कहते भी है सत्य चित्त आनंद सत्यम शिवम सुंदरम। तो तुम भी सच्चा सोना बन करके बाप के साथ बाप के घर में चले जाएंगे। बाप कहते हैं जब तुम सच्चा सोना बनेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे साथ चल पड़ेंगे। फिर सतयुग में भी तुमको सच्चा सोना मिलेगा। अभी तुम जानते हो कि कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? सतयुग में तो कृष्ण का नाम रूप बदल जाता है ना, वहां तो सब गोरे होते हैं, फिर सांवरा क्यों कहते हैं? तो बाप समझाते हैं कि सतयुग में तुम भी गोरे थे, फिर द्वापर से तुम्हारे में खाद पड़ी है। इस कृष्ण के लिए भी ऐसे ही कहेंगे, अभी तुम बिल्कुल आयरन एज बन पड़े हो, अभी मैं सुनार आया हुआ हूं, सबको ज्ञान योग की भट्टी में डाल देता हूं। फिर आखिरी इन बम्बोर को आग लगेगी, फिर तो सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खा करके हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। ये ईश्वर की भट्टी है, ये सबको पावन बनाने के लिए है। बाप है ज्ञान का सागर, उस बाप से तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वहां गंगा जी के पास देवता की मूर्ति भी रखी जाती है। वास्तव में वो देवता तो तुम हो, भगवान के बच्चे ज्ञान गंगाएं हैं। कौन से देवता की मूर्ति रखी जाती है जहां गंगा को दिखाते हैं? या तो शंकर की मूर्ति रखी जाती है या शिवलिंग रखा जाता है। तो तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान के बच्चे ज्ञान गंगाएं भी हैं, देवता बनते हो ना। जब स्वर्ग में आवेंगे तो उनको देवता कहेंगे। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। अभी तो पतित हैं। भारत गोल्डन एज था, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, फिर आयरन एज बना। अभी बाप फिर से गोल्डन एज में ले जाते हैं। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। सोना 14 कैरेट होगा तो जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद डालने से 20 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट भी हो जाता है। तो आत्मा में भी दिन प्रतिदिन खाद पड़ती जाती है, पतित बनती जाती है, तो उनको पवित्र बनाना पड़े। बाप कहते हैं मैं सुनार हूं, तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूं, मैं धोबी भी हूं, तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को भी धोता हूं, योग बल से तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूं। 1865 की वाणी का 3रा पेज। तो सिर्फ बाप को याद करना है, याद में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। ये भी समझ लो कि जो बाहुबल वाले हैं वो विश्व के मालिक नहीं बन सकते, सिर्फ योग बल से ही विश्व की बादशाही मिलती है। हाँ, उन बाहुबल वालों में इतनी ताकत जरूर है कि अगर ये क्रिश्चियंस भाई भाई आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ये ला नहीं कहता है कि विकारी मिलकर के खीर खंड होकर के रह सके। कहानी भी है, दो बिल्ले लड़े, मक्खन बंदर खा गया। तो वो तो आपस में लड़ते हैं और बीच में माखन भारत को मिल जाता है। इसमें नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। तो ये मक्खन का गोला कौन सा गोला हुआ? कहेंगे विश्व की बादशाही का गोला हुआ। वो मक्खन की तो बात नहीं है जो भक्त लोग कृष्ण लीला में दिखाते हैं, ये तो स्वर्ग का राजभाग कृष्ण को मिल जाता है। बाप समझाते हैं वो क्रिश्चियन लोग आपस में लड़कर के भारत के मालिक बने हैं और भारतवासियों को भी लड़वाया है। अभी फिर तुम उनसे वसूल कर रहे हो। तुम जानते हो अभी वो क्रिश्चियंस आपस में मिलकर के एक नहीं हो सकते, उनको मिलना थोड़े ही है। विनाश हो जाएगा फिर तुम मालिक बन जाएंगे। तो इससे पहले बाप की श्रीमत पर चलना पड़े, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हैं। ये है आसुरी मत, सारी पतित दुनिया आसुरी मत पर है, एक भी पावन नहीं है। ये भी जानते हो कि पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं होता। अभी तो सब पतित है, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हम सीताएं जो रावण की जेल में पड़ी हैं, कहते हैं हे राम आकर के छोड़ाओ। यहां से छुड़ा करके फिर पावन दुनिया में हमको ले चलो। तो भक्त लोग तो गाते रहते हैं परंतु बेचारे जानते कुछ नहीं है। वो तो जो मन में आया सो कहते रहते हैं। रावण ने उनको बिल्कुल ही अज्ञान की नींद में सुलाई दिया। अभी बाप आकर सबको जगाते हैं। परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता है उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण उनकी भी बायोग्राफी को जानते हैं। हम लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी जानते हैं। तो हम नालिस फूल बन गए ना। तुम कृष्ण के मंदिर में जावेंगे तो तुम तो समझेंगे कि ये सतयुग का पहला प्रिंस था। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बना। दिलवाड़ा मंदिर में भी नीचे काले चित्र रखे हुए हैं और ऊपर में गोरे चित्र दिखाए हैं। ये गोरे चित्र ऊपर में क्यों दिखाए हैं? क्योंकि देवताएं आत्मिक स्थिति में ऊंची स्टेज में होते हैं। तो ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा सच्चा सच्चा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं। ये पुरुषार्थ की नीची स्टेज है। ऊपर में फिर प्रारब्ध खड़ी है। अभी तो ये सारी दुनिया नरक है। जब कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। जैसे नेहरू मरा तो भी लिखते हैं स्वर्ग पधारा। तो बच्चे उनको चिट्ठी लिखते हैं, अगर नेहरू स्वर्ग में गया फिर तुम ब्राह्मण क्यों खिलाते हो? फिर ब्राह्मण खिलाने की क्या दरकार है? नेहरू को तो फिर स्वर्ग में बहुत वैभव मिलते होंगे। तो तुम नेहरू जी को नीचे नरक में बुलाए नरक की चीजें क्यों खिलाते हो? परंतु बेचारे समझते नहीं हैं। कितना अंधकार है। बाप बच्चों को समझाते हैं, खबरदार रहना, कोई को दुख नहीं देना। अगर दुखी देंगे दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। बाप तो दुख हरता सुख करता है। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो योग बल का दान देना है। अभी बाप कहते हैं, लाडले बच्चे 5 विकारों का दान दो तो तुम सर्वगुण संपन्न देवता बन जावेंगे। तुम्हारे दुख का ग्रहण छूट जावेगा और तुम सुखधाम के मालिक बन जावेंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। ये 5 विकारों का दान लेना तो अच्छा है ना। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से तुम काले बन पड़े हो। तो हम तो आया हूं तुम्हारे विकार मांगने के लिए। विकार ही मांगते हैं और तो कुछ नहीं। बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी बनेंगे तो विकार आपे ही भाग जावेंगे। अभी ये देहभान भूल जाना है कि मैं सेठ हूं, मैं फलाना हूं। ये देहभान की बातें भूल जाना है। सदैव समझो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा समझने से फिर देहभान भी नहीं आवेगा और कोई भी विकार नहीं आवेगा। आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। अगर आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप भी याद नहीं आवेगा। तुम तो जानते हो वर्षा बाप से मिलता है, उनसे वर्षा मिलता है ना, इनसे वर्षा नहीं मिलता। किनसे? ब्रह्मा से, क्योंकि ब्रह्मा कोई बाप नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। देवताएं देही अभिमानी है ना, जानते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, फिर आधा कल्प देह अभिमानी बने। अपन को आत्मा समझेंगे तो बाप जरूर याद आवेगा। अगर देह समझेंगे तो लौकिक बाप याद आवेगा, लौकिक देह के संबंधी याद आवेंगे, फिर उनकी याद करने से और भी पाप बढ़ेंगे। मुझे सदैव आत्माभिमानी बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। मैं तो सदैव आत्माभिमानी हूं ना, तो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। अगर याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा कैसे करूंगा? बाप तो अपने बच्चों की रक्षा करेंगे ना, बाप तो आत्मा की रक्षा करते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री दुर्गति में जाने की है। बाप तो सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा। इस ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। तो वेदों शास्त्रों में भी सार है ना, कहते हैं जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। क्योंकि शास्त्र पढ़ाने वालों ने सार की बातें तो बताई नहीं। तो अभी मुझे एक से सुनो, मैं शरीर द्वारा तुमको सुनाता हूं। ये ब्रह्मा कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है। कौन सा? दाता एकराज कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं? है दादा लेखराज तो कहते हैं मेरा शरीर है, लेकिन दादा लेखराज जब शरीर छोड़ देते हैं तो जिस शरीर में प्रवेश करेंगे वो उनका शरीर नहीं है। और शिव का भी शरीर नहीं है। कहते हैं ये पुरानी जूती है, इससे जास्ती पुरानी जूती कोई होती नहीं है। मैंने लोन लिया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। एक में प्रवेश करता हूं या दो में प्रवेश करता हूं? अगर कहें एक में प्रवेश करता हूं तो इनमें नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इसमें प्रवेश करता हूं। तो पहले नंबर का पावन यह था, कौन है? पहले नंबर का पावन कौन सा लोन लिया हुआ शरीर था जो कृष्ण को भी सत्युग में जन्म देने वाला है? फिर पिछाड़ी में यह पतित भी सबसे जास्ती बनता है, इसलिए इनमें प्रवेश कर फिर पावन बनाता हूं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। एक अधूरी मुरली है 2268 की, रिकॉर्ड चला है सो पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। मीठी मीठी बच्चों ने गीत सुना, ये गीत आदि ड्रामा अनुसार तुमको समझाने के लिए पहले से ही बने हुए हैं। अगर गीत न भी सुनावे तो भी कोई हर्जा नहीं है, बच्चों की मंजिल से लागू रखता है कि बच्चे याद किसको करते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो, क्योंकि इसको पतित भ्रष्टाचारी पाप आत्माओं की दुनिया कहते हैं। गीत तो गाते हैं परंतु ये किसी को पता नहीं है कि पाप आत्माओं की दुनिया किसको कहा जाता है और पुण्य आत्माओं की दुनिया किसको कहा जाता है। कहते हैं पाप की दुनिया से दूर ले चलो जहां सुख और शांति हो, इस पतित दुनिया में तो बहुत दुख बहुत अशांति है। पहले ये भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, तब भारत स्वर्ग था, अभी भारत ही नरक बन पड़ा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि यूरोप स्वर्ग था, नहीं, हाँ ये कहेंगे अभी यूरोप भी हेल है, वो भी मानते हैं कि हेवनली गॉड फादर है। इस समय ये सारी दुनिया हेल है जिसको डेविल वर्ल्ड कहते हैं, ये भी जानते हैं डीटी वर्ल्ड पैराडाइज था, परंतु कब था ये नहीं जानते। न जानने का कारण है कि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए है, अभी जो थोड़ा बहुत सुनते हैं वो थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं कि क्रिश्चियन लोग तो समझते भी हैं कोई कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तुम बच्चे भी जानते हो कि स्वर्ग था भारत, उस समय और कोई धर्म नहीं था, ये इस्लामी बौद्ध आदि तो पीछे आए हैं, वो तो ऐसे ही धुक्का लगाते रहते हैं कि भारत स्वर्ग था तो वहां पवित्रता सुख शांति सब थी। सन्यासी लोग तो संपत्ति को मानते ही नहीं हैं, इसलिए वो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। उन सन्यासियों को भी चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, गोल्डन एज सिल्वर एज आदि आदि, अभी तो वो भी तमो प्रधान बन गए, कितने बड़े बड़े फ्लैट लेकर के बैठे हैं। गवर्नमेंट भी कहती है उन्होंने घर बार छोड़ा है, परंतु मैं कहता हूं ये कौन कहता है कि उन्होंने घर बार छोड़ा है, अभी तो वो बड़े बड़े मंदिर आदि मठ पंथ आदि बनाते रहते हैं, गवर्नमेंट भी उनको मदद करती है। यहां तो मनुष्य भूख मरते रहते और वो लोग फालतू ये सब बनाते रहते। गवर्नमेंट भी रिलीजियस है, जो पुरुष भी नहीं होते हैं और स्त्री भी नहीं होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ये गवर्नमेंट भी ऐसी है, ड्रामा अनुसार इनको ऐसा बनना ही है। रिलीजन के लिए अच्छे अच्छे प्रबंध करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो उनको रिलीजियस तो नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा को भी पुकारते रहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं शांति दो, अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए, ये भी तुम जानते हो कि बाप आते हैं तो पहले पहले ज्ञान तुमको मिलता है। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीवात्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया है, शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा की मुखवंशावली बने हो। लेकिन क्यों बने हो? बाप से वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा मुखवंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं, तो तुम्हारे लिए अभी संगम है, क्योंकि चार युगों में तो ब्रह्मा होता ही नहीं है। ये तो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना रचते हैं। तुम कहते हो हम आत्मा पावन थे, अभी पतित बने हैं, सो फिर पावन बनेंगे। तो कहते हो हे पतित पावन बाबा हमको फिर से पावन बनाओ। ऐसी ऐसी अपन से बातें करते रहो, ये आत्मा को खुशी की खुराक मिलती है कि हम आत्माएं पहले पावन थी, हम मुक्ति धाम में रहती थी, फिर हम स्वर्ग में आए तो हमने इतने जन्म लिए, फिर कैसे कैसे नीचे गिरते गए, अभी फिर हमको गोल्डन एज में जाना है। बाप कहते हैं 5-4 वर्ष पहले भी तुमको कहा था माम एकम याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधे आदि में रहते, सिर्फ अपन को आत्मा समझो। समझना चाहिए हमको अब पावन बनना है, घर जाना है और पावन दुनिया का मालिक बनना है। ये आयरन एज की दुनिया से हम गोल्डन एज की दुनिया में कैसे जावेंगे, ये सदैव चिंता लगी रहे। बाप भी युक्ति बतलाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जावेंगे। गीता में भी 2 बार यही बातें आई है, मन मना भव मद्यादि भव। तो कहते हैं हे बच्चे देह अभिमान छोड़ दो और बाप को याद करो, वो बाप ही आलमाइटी अथॉरिटी है जो तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज भी समझाते हैं ना। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी हुई है, तुमको ज्ञान भी मिल रहा है, पर तुम मुझे जितना याद करेंगे उतनी तुम्हारी आत्मा प्योर होती जाएगी। इसके अलावा पवित्र बनने का और कोई उपाय नहीं है। जानते हो पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनना है, गंगा स्नान करने से पावन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो गंगा तो पानी की गंगा है, पानी को बिलोने से कोई सार नहीं निकलता है। ये तो बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान का मंथन करने से सार निकलेगा। तुम जानते हो कि बाप नित नई बातें सुनाते हैं। चाहे पानी की जड़ गंगा हो, चाहे ज्ञान की गंगाएं हो, नित नई बातें तो नहीं सुनावेंगी। अगर गंगा से तुम पावन बनते तो फिर तुम यहां होते ही नहीं। पतित दुनिया में क्यों आ जाते? गंगा यमुना नदियां तो हर युग में होती ही हैं। आयरन एज में फिर भी सबको आना पड़ता है। तो पहले सवेरे सवेरे इसी ख्यालात में बैठना है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम से मेरे प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है हे मेरी बुद्धि अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो योग लगावेंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बन जावेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ही है। कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युग पर आए तुमको पावन बनाता हूं, और पावन बनाने के लिए एक सेकंड की बात है। जी क्या बात हुई? एक सेकंड की बात है। तो ये 70-75 साल किस खाते में गए हैं? पक्का निश्चय बुद्धि बनने में ये सारा टाइम चला जाता है। अभी अभी निश्चय बुद्धि बनते हैं, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं। जैसे कि बाप को पहचानते ही नहीं। तुम जानते हो कि वैद्य लोग ऐसी दवाई देते हैं जो फोड़ा अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। तो बाप भी बड़ा वैद्य है। बताते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा, ज्ञानी तू आत्माओं को ज्ञान के आधार पर साक्षात्कार कराता है। ऐसा न हो कि जो बौद्धिक आत्माएं हैं, अपवित्र आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर राजा बन के अपवित्र कर्म किए हैं, उनको भी वो स्टेज प्राप्त हो जाए जो पवित्र आत्माओं को प्राप्त होनी चाहिए। पवित्र आत्माओं को उठाने के लिए ये बंद आंखों का साक्षात्कार है। ये कार्य दूसरी आत्माओं को नहीं सौंपा जा सकता। पवित्रता और ज्ञान दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ज्ञान के बगैर पवित्रता कोई काम की नहीं, और पवित्रता के बगैर ज्ञान कोई काम का नहीं। ये अंधे और लंगड़े की कहानी है। इसलिए बाप जो दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार होता है उसकी चाबी अपने हाथ में रखते हैं। रुद्रमाला के मणकों के हाथ में नहीं दे सकते, ये तो महाभिकारी है, सत्यानाश करके रख देंगे। प्योरिटी को तरजीह नहीं देंगे। और बाप दादा तो, बाप तो एवर प्योर है। जो जैसा होता है वैसों को तरजीह देता है कि नहीं देता है? है? देता है तो दे रहा है।
हाँ,
पवित्र आत्माओं को भी मान्यता बहुत देता है। ज्ञानी तो आत्माओं को भी मान्यता देता है। एवर प्योर है इसलिए वो पवित्र आत्माओं को भी आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्माओं को इतना ज्ञान की दरकार नहीं है। 63 जन्म में ज्यादा नीचे गिरे हैं या रुद्रमाला के मण के ज्यादा नीचे गिरे हैं? है, रुद्रमाला के मण के ज्यादा नीचे गिरे हैं। तो उनको शुरुआत से ही ज्ञान दिया जाता है। तो अपने बुद्धि का उपयोग कर लो, देखो कहां तक लंगड़ा लंगड़ा के चलते हो, नदी पार कर पाते हो कि नहीं। तुम्हारा बुद्धि का अहंकार तो मिट जाए।
इंटर पार्सल है जो अभी चल रहा है उसमें युगल युगल निमित्त मन की गीता पाठशाला चला रहे थे
हाँ?
उसमें से माता का शरीर छूट गया
वो तो बता दिया ना पोखर पोखरा में भी ये बात बताई गई थी
बाबा बताए थे लेकिन उसमें कुछ पूछना रह गया था
क्या पूछना रह गया
जो उसमें सिर्फ आप भाई रह गए
हाँ
वो स्थान को अब किस तरह से उपयोग किया जाए
जब तक कोई युगल जिम्मेवारी नहीं लेता है तब तक उसी स्थान पर दो चार माताएं उनको निमित्त बना दिया जाए कि जब तक वो अटेंड न करें तब तक दूसरे लोगों का क्लास नहीं चल सकता हाँ जी
दूसरे लोगों का माने कोर्स का क्लास नहीं चलता या
न कोर्स का न मुरली का न याद का क्योंकि पुरुष तो अपनी मनमानी पर उतर आते हैं
तो अब क्लास के लिए क्या करना चाहिए
बताया ना दो तीन जो आने वाली माताएं हैं मैच्योर्ड उनको निमित्त बनाओ
उसी घर में
माने वो जब तक ना आए क्लास में तब तक क्लास शुरू नहीं होगा फिर जब कोई युगल जिम्मेवारी ले ले तो उसके घर में क्लास ट्रांसफर कर दो
लेकिन वो भाई बाबा से पूछना चाहता है कि क्या उस घर को पांडव भवन बना सकते हैं
किस घर को
हाँ
तो कन्या माता है आना बंद हो जाएंगी अरे तो कुछ ना वही
पूछने के लिए
तो पूछो
तो क्या उसको पांडव भवन
बनाओ 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 कोई कन्या माता प्रवेश नहीं करने पाए नहीं तो पांडव भवन कैंसिल
मैंने पांडव भवन बनाएंगे तो कन्या माता नहीं प्रवेश करेगी
नहीं और शक्ति भवन बनाएंगे तो कोई पांडव नहीं आएगा
और पांडवों का संगठन तो रख सकते हैं ना बाबा
रखो
भाई भाई मिलकर
डायरेक्शन क्या
संगठन तो कर सकते हैं ना
क्यों नहीं कर सकते
बाबा का डायरेक्शन है इसमें
क्या
पांडव भवन जैसे
है ना डायरेक्शन पांडव पांडवों को समझाएं कन्या माताएं कन्याओं माताओं को समझाएं डायरेक्शन नहीं है और क्या मनमत पे कोई बात बोली जाती है क्या
नहीं वो जैसे पूछना चाहते
हैं
वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं
क्यों नहीं कर सकते हैं पांडव पांडवों को समझा सकते हैं है
बाबा
यूनिटी तो बना के दिखाओ ऐसी प्योरिटी का प्रूफ तो दो जो पांडव इकट्ठे हो जाएं
बाबा
हाँ
बाबा ने मुरली में बोला है आगे चलकर गृहस्थ की बहुत महिमा हो जाएगी
है युगलों की बहुत महिमा निकलेगी है
तो अभी यज्ञांश में गृहस्थ की संख्या घटती जा रही है और कुमारों की संख्या घटती जा रही है बाबा ने ऐसा लक्ष्य दिया है युगलों की महिमा हो जाएगी कुमार युगल बनते जा रहे हैं तो कुमारों को बचाने की कोई आइडिया नहीं है बाबा
है आइडिया है ना बाबा ने तो कितनी बड़ी बात बोल दी कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं कुमारियां नहीं कर सकती अदर कुमारियां भी नहीं कर सकती जो चाहे सो लेकिन कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं अदर कुमार भी नहीं कर सकते
जो चाहे वो कर सकते
जो चाहे सो कर सकते
हैं क्या चाहे और क्या
जो चाहे अच्छे से अच्छा करना चाहे वो भी कर सकते हैं अच्छे से अच्छा है भगवान का घर बनाना
कैसे बनाएंगे
कैसे बनाएंगे सहयोग दे करके
वो फिर बाबा बोलते सन्यासी कुछ नहीं कर सकते गृहस्थी युगल नहीं कर सकते
हाँ हाँ सन्यासी कुछ नहीं कर सकते भगवान के बच्चे बने हैं तो सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं भगवान के बच्चे क्या हैं जो भगवान बाप के डायरेक्शन पे चलते हैं क्या हैं गृहस्थी हैं कि सन्यासी हैं गृहस्थी है
बाबा बाबा कुमारियों को तो गौशाला में डाल करके उनको रक्षा कुमारियों को तो बाबा सरेंडर करके गौशाला में डाल करके वो रक्षा करते हैं
तुम हिंदू हो कि मुसलमान क्रिश्चियन क्योंकि मुसलमान क्रिश्चियन पूर्व जन्म की बात भूल जाते हैं बार बार वो क्या समझते हैं एक ही जन्म होता है पुनर्जन्म नहीं होता तो पुनर्जन्म तुमको बार बार भूल क्यों जाता है
नहीं,
तो भूले नहीं तो समझ लो कर्म ऐसे किए हुए
तो भाइयों को तो ऐसे कली जंगल में छोड़ दिया है
हाँ हाँ तो कर्म किसने किए
तो उनके लिए कोई प्रबंध नहीं है
क्यों नहीं प्रबंध है वो चाहें तो अपने को सरेंडर बना करके चले, कुमार भी सरेंडर होकर ही चल सकते हैं। मन में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम तो खूब है, छुरी चलाए चलाए काट डाले।
और बाबा भगवान बोला था कि बैलों को ठीक करने के लिए नथनिया लगाने वाली विजयमाला आएगी,
है?
लेकिन अभी जो कुमारों के पास संगीनी आई है वो विजयमाला आई है।
कौन आई है?
कुमारों के पास जो अभी गृहस्थी बने है ना,
कुमारों के पास गृहस्थी बने है, कुमारों के पास युगल बने
जो अभी कुमार,
जो कुमारों ने शादी कर ली,
हाँ तो आई है वो नथनी लगाने वाली है या ऐसे आई है?
तो सत्यानाश करने वाली आई है।
बाबा पानी पी लिया,
हमारे तो हाथ में है। कोई बात नहीं, टाइम पड़ा हुआ है
बाबा। गंधर्व विवाह का क्या मतलब है?
गंधर्व विवाह का मतलब है बाप के आर्डर से ब्राह्मण ब्राह्मणी शादी करें, बाप के डायरेक्शन पर शादी करें। जिनके माँ बाप विरोधी हों ज्ञान के प्रति, उनको आपस में शादी करा देते हैं।
जैसे रमेश गुस्सा की शादी हुई थी ब्रह्मा बाबा ने,
तो ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्शन दिया, शिव बाबा ने कहा दिया?
अच्छा अभी जैसे अपने एडवांस के जो,
एडवांस में किसी को डायरेक्शन दिया है क्या?
एडवांस के जो बहुत कुमार जो शादी कर रहे हैं,
हाँ वो अपनी मनमत पे कर रहे हैं या बाबा के डायरेक्शन पे कर रहे हैं?
तो श्रीमद के बरखिलाफ हो रहा है।
बिल्कुल बरखिलाफ हो रहा है।
शादी किया है ना कुमार लोगों ने, तो वो फिर माफीनामा लिख करके फिर बाबा के पास जाकर के बट्टी करके वहाँ
सरेंडर होके रहेंगे,
फिर ज्ञान उठा सकते।
माफीनामा का मतलब क्या?
फिर वापस आ गया तो जैसे मान लीजिए कोई कुमार था, शादी कर लिया, दोनों युगल जाके भट्टी कर लिया,
कर ली,
फिर घर में आके अपने रह रहे हैं, तो उसका क्या?
घर में आके क्यों रह रहे हैं? बाबा ने तो कहा पहले ही दिन ढेर हो जाएंगे, तो घर में जाके क्यों रह रहे हैं?
सरेंडर नहीं हुआ तो,
सरेंडर नहीं हुआ तो सरेंडर हो जाए ना। सरेंडर का मतलब क्या? बाप का बच्चा बन जाए। बाप का बच्चा बना तो रावण का बच्चा बना या राम का बच्चा बना? राम का बच्चा बना। सारी दुनिया रावण संप्रदाय है, तुम बच्चे सरेंडर होते हो तो राम संप्रदाय बनते हो। इसका मतलब क्या हुआ? जो बाप के बच्चे बनते हैं वो ही डायरेक्शन पर चलते हैं, बंधे हुए हैं डायरेक्शन पर चलने के।
बाबा फिर वो युगल फिर गीता पाठशाला चलाने के निमित्त बन सकते हैं?
नहीं, वो तो जो जैसा होगा वैसे ही पढ़ाई तो पढ़ाएगा। शादी किया हुआ होगा तो दूसरों को क्या सिखाएगा? तुम भी शादी कर लो।
मैंने फिर गीता पाठशाला चलाने के निमित्त?
बिल्कुल नहीं,
ज्ञान उठा सकते हैं।
ज्ञान उठाओ, पुरुषार्थ करो।
जैसे बाबा जो बच्चे मान ज्ञान में एडवांस में हो चाहे बेसिक में हो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा भी है जो ज्ञान में,
बेसिक में बच्चे कहाँ होते हैं? शिव बाबा के,
या शिव बाबा के नहीं मान लीजिए ब्रह्मा के बच्चे होते हैं
तो क्या फायदा?
शुरू में मान लीजिए, बाद में जैसे कोई बच्चा मान लीजिए एडवांस में सच्चा बाद में बना, पहले बेसिक का बच्चा बना, उसके बाद मान लीजिए अगर वो ज्ञान में आने के पहले शादीशुदा हो
तो वो तो बहुत से होते हैं युगल।
आज मैंने किसी की 40 वर्ष पहले शादी हुई,
हाँ तो क्या हुआ? वो तो युग, वो तो पहले से ही युगल है, उसका कोई पाप थोड़े ही बन गया। शादी बर्बादी जो ऑलरेडी युगल हैं, उनके लिए थोड़े ही कहा गया। जिन्होंने शादी नहीं की है ज्ञान में आने के बाद, उनके लिए ये बात है।
पंडित लोग है ना, बाहर बाहर के पंडित लोग, ये वो लोग से बाबा को जानते हैं। तो आप से बाबा के पास जाना है तो हम मुझे ले जाओ।
बाहर के पंडित लोग शिव बाबा को जानते हैं?
जानते हैं।
पहले अंदर के पंडित विद्वान आचार्य जो है वो तो बाबा को जान जाए।
आपको लाना है वो लोग बाबा जान से कि आप जाना है तो सबको ले, संदेश दिया ऐसे किसी पंडित को,
तो पंडित को
तो उन्होंने बोला आप जाते हो तो सबको लेकर जाओ,
पंडित तो तुम तो चलो पहले, तब सबको लेके जाए। आप गुरु जी बैंगन खाएं, दूसरे को तरकीब सिखाएं। आपको कैसे मालूम हमें प्यास लगी? सपना आ रहा है क्या? हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम।
आदमी डायरेक्शन देते हैं कि ब्रह्मा के पास से शिव बाबा डायरेक्शन देते या ब्रह्मा शादी कर रहा है तो करो, लेकिन पवित्र बैठो।
ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके नहीं बोलते हैं? शिव बाबा जब वाणी चलाते हैं तो ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोलती है या नहीं बोलती है? अरे है, बोलती है।
माना शिव बाबा कोई भी गंधर्व विवाह के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं? शिव बाबा कोई भी गंधर्व विवाह के लिए डायरेक्शन नहीं देते?
देंगे, लायक बनेंगे तो डायरेक्शन देंगे, नहीं तो 108 युगल कहां से निकलेंगे? 108 युगल मणकों की माला तैयार होगी या सन्यासियों की माला तैयार होगी? है युगलों की माला तैयार होगी। गुल अंत में पुरुषार्थ संपन्न होगा या अभी संपन्न हो रहा है?
बाबा 108 युगलों की महिमा होगी।
है
108 युगलों की?
हाँ बिल्कुल महिमा होगी।
और जो अभी युगल हैं आगे चल के युगलों की महिमा होगी बोला है, रुद्रमाला और विजयमाला के जो युगल बनेंगे उनकी या अभी जो है?
हाँ बिल्कुल, ये रुद्रमाला और विजयमाला के युगल बनेंगे, वो श्रीमत पे बनेंगे कि मनमत पे बनेंगे? फिर ये महिमा क्यों नहीं होगी?
अभी के युगल की बात नहीं है, अभी जो युगल चल रहे हैं उनके लिए नहीं।
उनके लिए भी हो सकता है, लेकिन ये बताया है जो अभी के युगल है वो सत्युग में युगल नहीं बनेंगे। क्या? हाँ, सत्युग में सब बदल जाएगा, इस दुनिया का कुछ भी सत्युग में नहीं होगा। और
बाबा वो गीता पाठशाला की निमित्त भाई है, जिसकी माता
सरिष्ठ
है, गीता पाठशाला की जो निमित्त भाई है ना,
हाँ,
जिसकी माता युगल ने सरिष्ठ पड़े,
हाँ,
तो वो भाई फिर शादी करके गीता पाठशाला चलाने की निमित्त।
श्रीमत के बरखिलाफ चलने वाले को रावण संप्रदाय समझो।
बाबा परमिशन दे सकते हैं उसको?
अरे बाबा श्रीमत के बरखिलाफ डायरेक्शन दे सकते हैं? नाक पकड़वा के डायरेक्शन दिलवाओगे?
नहीं, नहीं बाबा।
तो फिर बोलते क्यों?
नहीं, बाबा का डायरेक्शन क्या है जानना चाहते?
बाबा का डायरेक्शन ये है कि शादी बर्बादी ये है,
फिर वो गंधर्व विवाह आदि बहाना करके वो शादी करके फिर
गंधर्व विवाह लायक बन गए। अच्छा
बहुत हिम्मत से
है,
बहुत हिम्मत से बाबा, जो आज की जो 40 वर्ष पहले युगल बने थे उन लोगों में कितनी परेशानी हो रही है,
है?
अभी कोई चाहे शादी कर ले और रह जाए संभव है ना? अनुभव बताता है बाबा।
बाबा जैसे कि रन से अंदर कोई लायक बनाए नहीं क्या? मतलब
अरे सिवाय धर्मपाल के पहले नंबर कौन ले सकता है? हैं? कोई ले सकता है बताओ? जितने भी नेशंस दुनिया में हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, उन सबसे ऊंचा राष्ट्र है नेपाल, है कि नहीं है? एक नेपाल राज्य भारत का ऐसा है जिस पर आज तक भी विदेशियों ने आक्रमण नहीं कर पाया, और उसमें जो मिनी मधुबन खुला उसमें मुख्य पांडव है धर्मपाल, सरेंडर होके रहते कि नहीं? अभी भी मनमानी चल रही है तो क्यों नहीं बनेगा? और है
नील कुमारी माता के वृद्ध माता है ना?
है
वृद्ध माता है,
वृद्ध माता है,
हाँ,
पति किया है, अभी खान पान भी शुद्ध है, बाप की याद भी करती है, लेकिन घर दूर होने के कारण, पाठशाला काठमांडू से दूर होने के कारण
कहाँ रहती है?
है
कितने किलोमीटर दूर है?
25 किलोमीटर
25 किलोमीटर दूर है।
बहुत भीतर है।
बहुत भीतर है, बस जाती कि नहीं?
बूढ़ी
सामने तो बैठी हुई है, पीछे बैठी बता तो रहे हैं।
इनकी भी माता जी?
इनकी भी माता जी। हाँ तो जो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं और चल ही नहीं सकते हैं, उनकी तो बात ही अलग है।
यहाँ आ नहीं सकती?
हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं आ सकती है तो कैसे आएगी? कौन कहता है जबरदस्ती आए?
सेवा
उसका प्रूफ चाहिए ना कि रोज मुरली सुनती है। रोज मुरली सुनती है कि नहीं सुनती है? नहीं सुनती है तो फिर कैसे आए? तो कैसे कहें? हाँ भट्टी की हुई है, भट्टी करने के बाद बाबा की मुरली रोज नहीं सुनता है तो पहले डायरेक्शन को तो पहले ही खत्म कर दिया। स्टूडेंट है बाप का?
हो
तो आप बाप का स्टूडेंट ही नहीं है, है?
बाबा सेवा नहीं
है
जी, सेवा नहीं।
और जब मुरली नहीं सुनती है तो बच्चा ही नहीं रहा, बाप का स्टूडेंट तो बने। आ सकने की बात कहाँ बताई, यहाँ तो मुरली सुनने की बात बताई। जो घर में भी रह करके मुरली ही नहीं सुनते और घर में टैप रिकॉर्ड नहीं रह सकते
है? घर में कोई ज्ञान नहीं है, कोई उनको वैल्यू नहीं करता, कोई उनके।
आप तो हैं? दूर कितने?
काठमांडू में मैं।
आप काठमांडू में और वो
25 किलोमीटर?
वो 25 किलोमीटर दूर। तो आप एक वो क्या होता है वो कान में सुनने वाला आईपॉड, वो आईपॉड उनको खरीद के दे दो, दो एक इधर भरते रहो एक उनको पहुंचाते रहो, कान में आराम से सुनते रहिए, सो कुछ है नहीं।
इसके बाद आप में सेवा?
बिल्कुल,
अगर वो मुरली सुनेंगे तो
है प्रूफ तो होना चाहिए।
अब 5-6 महीने भाई अलग ना सुने,
तीन चार महीना हो गया
जिनको घर जाना हो घर चले जाएं, ये न कहें कि हमको क्लास में जबरदस्ती देर कर दिया बैठा के।
यहाँ पर भारतीय राजदूतावास के सहयोग के द्वारा एक पुस्तकालय खोला के रखा है, तो वहाँ पर दिन में स्वयं लोग आकर के अध्ययन करते हैं, तो हमारे घर से कोई भी ऐसा जनरल पब्लिक कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर रखने से मतलब कोई न कोई लोग उसको देखते रहते हैं, मतलब सेवा है उसको, मतलब वहाँ दे सकते हैं।
पुस्तकालय में लिटरेचर रखने के लिए बाबा ने मुरली में मना किया है या हाँ किया है? बाबा ने तो बोला है जो पुस्तकालय हैं उनमें बाबा का लिटरेचर रखो, ताकि पुस्तकालय में आने वाले जो पढ़ना चाहें वो भी उनको भी फायदा हो। हाँ जी,
लेकिन बाबा समझने वाला भी तो चाहिए। आज मान ली हमारे एडवांस ज्ञान है, अगर हम रख भी दे वहाँ पर तो बिना कोर्स किए कैसे समझेगा?
एड्रेस है उसमें कि नहीं? तो एड्रेस है, फोन नंबर है, रुचि होगी तो आएगा।
एक मेरे घर में जो इधर 7 रोज का कोर्स किया है लेकिन रोज मुरली सुनते हैं।
रोज मुरली सुनते हैं? हाँ,
आने के टाइम नहीं मिला है। भट्टी करने के लिए इधर से परमिशन मिल सकता है?
भट्टी करने के लिए क्यों? जिन्होंने साप्ताहिक कोर्स किया है और वो भट्टी करना चाहें तो मना कहाँ है?
मुरली यहाँ नहीं सुना बाबा।
है
मुरली यहाँ पे
तो घर में तो सुन लें।
रोज लेके गया
तो घर में तो सुन सकते हैं।
मिले पंडित
से मिलेगा
टीचर कोर्स नहीं करवा
एक बार परीक्षा तो देनी पड़ेगी कि स्टूडेंट है या नहीं है। चलो कोर्स दूसरी जगह से किया हो
लेकिन यहाँ पे टीचर भी तो कोर्स कराएगी।
कोई जरूरी नहीं, परीक्षा तो लेके देखेगी।
सही में
हाँ हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। वो तो दुनिया रह जाएगी।
प्रश्न है बाबा बीजी।
माताएं बोलना सीखें।
बाबा ये पर्चियां बहुत याद में
भाइयों की भी पर्चियां
है।